समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। एआईआर एफएम गोल्ड चैनल पर न्यूज मैगजीन प्रोग्राम आज सवेरे में आप सभी का अभिनंदन है। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और मेरे साथ हैं सरबजीत कौर। और श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, आज से चैत्र नवरात्र का शुभारंभ हो रहा है। देशभर में इस पर्व की धूम है। सरबजीत, इस मौके पर, इस अवसर पर देश के अलग अलग भागों में, अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से त्योहारों को मनाया जाता है।
जी देवेंद्र, एंड एज यू राइटली सेड, द फेस्टिवल ऑफ नवरात्रि इज बीइंग सेलिब्रेटेड अक्रॉस द कंट्री टुडे विद डिवोशन। टेम्पल्स आर ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद कलरफुल फ्लावर्स, रिलीजियस प्रोग्राम्स आर बीइंग ऑर्गेनाइज्ड, एंड गॉडेस दुर्गा इज बीइंग वर्शिप्ड।
मेरे मन के अंध तमस में ज्योतिर्मय उतरो,
Yes, listeners, you are with us in the program Aaj Savere, and Devinder, let's begin with the news headlines.
जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वोत्तर नए भारत की सफलता की सबसे बड़ी गाथा के रूप में उभरा है। उन्होंने कहा कि पिछले पांच वर्षों में पूर्वोत्तर में विकास के लिए निवेश की राशि का आवंटन कांग्रेस सरकार की तुलना में लगभग चार गुना बढ़ा है। एक अखबार के साथ भेंटवार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में क्षेत्र में बुनियादी सुविधाओं के विकास से पूर्वोत्तर को देश के बाकी हिस्सों से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि देश का पहला खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में खोला गया है और सरकार पूर्वोत्तर के आठ राज्यों में 200 से अधिक खेलो इंडिया केंद्र स्थापित कर रही है। उग्रवाद के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में उग्रवाद पर उल्लेखनीय रूप से नियंत्रण किया है और शांति सुनिश्चित की है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 वर्षों में 11 शांति समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। श्री मोदी ने कहा कि 2014 से 9,500 से अधिक उग्रवादी आत्मसमर्पण करके समाज की मुख्यधारा में शामिल हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सुरक्षा की स्थिति में सुधार के कारण सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम अफस्पा पूर्वोत्तर के अधिकतर हिस्सों से हटा लिया गया है। मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारकों के दौरों के साथ ही लोकसभा चुनाव के पहले और दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार चरम पर है। प्रधानमंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता नरेंद्र मोदी आज बालाघाट में एक सभा को संबोधित करेंगे।
प्राइम मिनिस्टर एंड सीनियर बीजेपी लीडर नरेंद्र मोदी विल बी ऑन अ टू डे विजिट टू तमिलनाडु बिगिनिंग टुडे। मिस्टर मोदी विल होल्ड अ रोड शो इन चेन्नई टुडे एंड एड्रेस टू पब्लिक मीटिंग्स टुमारो। द रोड शो इन चेन्नई विल बी हेल्ड आफ्टर 6 PM कवरिंग सेगमेंट्स ऑफ बोथ साउथ चेन्नई एंड सेंट्रल चेन्नई। तमिलिसाई सौंदरराजन इज बीजेपी'स साउथ चेन्नई कैंडिडेट, वाइल विनोज पी सेल्वम इज टेकिंग ऑन डीएमके'स दयानिधि मरन फ्रॉम सेंट्रल चेन्नई। Tomorrow, Mr. Modi will first address a public meeting in Vellore, canvassing votes in support of ally PMK's Dharmapuri candidate Soumya Ambumani and AC Shanmugam, another alliance party leader who is contesting on the BJP symbol from Vellore. The Prime Minister will then reach Mettupalayam near Coimbatore and address a public meeting in support of BJP candidates from Nilgiris, Dr. L. Murugan, Coimbatore, K. Annamalai and Polachi K. Vasantarajan. Elections to 39 Lok Sabha seats in Tamil Nadu will be held on April 19th. In Assam, star campaigners have started arriving in the state to woo the voters. Senior BJP leader and Home Minister Amit Shah is to hold a public meeting at North Lakhimpur this afternoon. Later in the evening, he will do a roadshow at Tinsukia, where polls will be held on 19th of this month. Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma, Union Minister Sarbanand Sonowal, and State BJP President Babesh Kalita are doing campaigning. Other parties are also holding meetings for their party candidates.
लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नाम वापस लेने का कल अंतिम दिन था। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए नाम वापस लेने के बाद 1625 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। इस चरण में 102 सीटों के लिए 19 अप्रैल को मतदान होगा।
The 2024 edition of the Badminton Asia Championship will begin today in Ningbo, China. Star shuttlers including H.S. Pranoy, Kidambi Srikanth, Lakshya Sen, P.V. Sindhu and others will represent the Indian contingent. In men's singles, H.S. Pranoy will take on Liu Guangzhong of China, whereas Kidambi Srikanth will lock horns with Anthony Ginting of Indonesia in the opening round. Meanwhile, Lakshya Sen will face the top-seeded Shi Yu Ki in the first round. Another Indian shuttler, Priyanshu Rajawat, will also mark the Indian presence in the tournament. He will meet Malaysia's Lee Zi in the first round. In women's singles, P.V. Sindhu will take on the Malaysian Go Jin-hui in the first round. Sindhu will be accompanied by Akarshi Kashyap, who will be facing Thailand's Busanen Ong Brahmun in the main draw.
जी और खेल खबरों में आईपीएल की बात करें तो आईपीएल क्रिकेट में चेन्नई के एमएच चिदम्बरम स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 7 विकेट से हरा दिया है। 138 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए चेन्नई की टीम 17 ओवर 4 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 58 गेंदों पर नाबाद 67 रनों की पारी खेली। इससे पहले बल्लेबाजी करने उतरी कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 137 रन बनाए। श्रेयस अय्यर कोलकाता के शीर्ष स्कोरर रहे, उन्होंने 32 गेंदों में 34 रन बनाए। चेन्नई के लिए तुषार देशपांडे और रविन्द्र जडेजा ने 3-3 विकेट लिए और मुस्तफिजुर रहमान ने 2 विकेट हासिल किए। आज चंडीगढ़ के महाराजा यादवेंद्र सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में पंजाब किंग्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और कुछ अन्य खबरों की भी बात करें तो प्रवर्तन निदेशालय ने सन परिवार पूंजी योजना के मामले में मेतुकु रविन्द्रन और उसके परिवार के सदस्यों की 25 करोड़ रूपये से अधिक चल अचल संपत्तियां जब्त की हैं। ये बैंक खातों की राशि तथा शेयरों के रूप में जब्त की गई हैं। निदेशालय ने तेलंगाना पुलिस द्वारा दर्ज विभिन्न एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की है। मेतुकु रविन्द्र और उसके करीबियों पर आम लोगों और भोले भाले निवेशकों के साथ धोखा करने का आरोप है। मेतुकु रविन्द्र और उसके करीबियों ने 10,000 लोगों के साथ धोखाधड़ी कर उनसे लगभग 158 करोड़ रूपये जुटाये। प्रवर्तन निदेशालय ने जांच में पाया कि आरोपियों ने निवेश करने पर प्रतिवर्ष 100% तक रिटर्न देने का लालच देकर विभिन्न योजनाओं के जरिए निवेशकों को ठगा है। और भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने दिल्ली के प्रमुख बाजारों के लिए एक व्यापक जागरूकता कार्यक्रम शुरू किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि यह अभियान विशेष रूप से खाद्य उत्पादों में कीटनाशक अवशेषों और दूषित पदार्थों का पता लगाने और उन्हें कम करने पर केन्द्रित है। इस दौरान खाद्य व्यवसाय संचालकों को जैविक खेती के महत्व, कच्चे माल के परीक्षण, कीटनाशक अवशेषों के दुष्प्रभाव, कृत्रिम रूप से पकाने और गैर अनुमोदित रसायनों के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के बाद अब हम रुख करते हैं महानगरों का। और सर्वजीत, आपके पास क्या खबरें हैं चेन्नई, बेंगलुरु और हैदराबाद से?
यस देवेंद्र, लेट्स बिगिन विद द न्यूज फ्रॉम चेन्नई। स्पोर्ट्स डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ तमिलनाडु हैज बिगन समर स्विमिंग कैंप्स इन द सिटी। दिस इज पार्ट ऑफ देयर लर्न टू स्विम इनिशिएटिव। दीज कैंप्स बिगैन ऑन April 1st। While the first level camps will go on till 12th April, more camps will be held till June 23rd. Swimming camps will be held in 5 levels and in 6 categories. 3 categories will be trained in the morning and 3 in the evening. These camps are being held in Vellacheri Shinoy Nagar, Anna Swimming Pool at Marina Beach and Nehru Indoor Stadium. The fee is 2,000 rupees for the city pools and rupees 2,400 for coaching at the Nehru Indoor Stadium. Some more news from Chennai. The Indian Institute of Technology Madras has launched a research foundation to expand its global footprint and provide funding for startups. IIT Madras Research Foundation would be a catalyst to startups in getting capital, funding for research and innovation, scaling its master's and doctoral programs through strategic university collaborations and industry partnerships. The foundation will focus on commercialization of patents and technologies, giving global access to startups from IIT Madras ecosystem and scaling up the academic partnerships. Mahesh Panchangula, director of IIT Madras, said that this will be a game changer, not just for the institute, but for the country, as it would take innovation to the global stage. News now from Hyderabad. Telugu-speaking people across the world are celebrating their Telugu New Year Day, Ugadi, today. People are observing the customary festivities with traditional fervour and gaiety. The festival is being celebrated across the two Telugu states, Telangana and Andhra Pradesh, to mark the beginning of the Hindu lunar calendar. People across Telangana are celebrating the Sri Sri Krodi Nama Ugadi of the Telugu calendar. Besides listening to Panchanga Shravanam, an ancient practice of listening to the New Year forecast, people serve a special Ugadi chutney comprising neem flower, jaggery, salt, sugarcane, tamarind and mango to indicate six basic tastes. Meanwhile, Governor C.P. Radhakrishnan, in his message, wished people of Telangana on the auspicious Ugadi and asked people to strive for the all-round development of the state and nation, fostering self-reliance and progress. The Bangalore International Airport Limited, BIAL, that operates the Kempegowda International Airport in Bengaluru, has tied up with Air India to develop Bengaluru as a premier aviation hub for South India. It will also work towards boosting air travel connectivity over the next few years. Air India, owned by Tata Group, will collaborate with BIAL to enhance international connectivity, operational efficiency and passenger experience over the next 5 years. Air India will strengthen its presence at Kempegowda International Airport, increasing its network of flights and establish a dedicated domestic lounge for premium and frequent travellers. A memorandum of understanding is also signed by Air India with Government of Karnataka to establish a comprehensive maintenance, repair and overhaul MRO facilities at the Bengaluru Airport. This is projected to generate over 1,200 new jobs for the highly skilled workers. In Karnataka, the Met Department has forecast hot and humid conditions over Dakshina Kannada, Uttara Kannada and Udupi districts during the next 4 days. Maximum temperatures likely to gradually rise by 2 to 4 degrees over all the districts of interior Karnataka during the next 2 days. It is advised that direct exposure to sunlight must be avoided between the noon and 3 p.m. It has also been suggested to wear lightweight, light-coloured loose and porous cotton clothes and wear sunglasses, use an umbrella or hat while going out in the sun. And Devendra, what's the buzz today from Delhi, Mumbai and Kolkata?
जी सरबजीत, राजधानी दिल्ली में 25 मई को होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दलों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान बढ़ा दिया है और लोगों से अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली की सभी 7 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इंडी गठबंधन के अंतर्गत 4 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की है, जबकि अन्य 3 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवारों को मैदान में उतारेगी, जिनके नामों की घोषणा अब तक नहीं हुई है। भाजपा ने पूर्वी दिल्ली सीट से हर्ष मल्होत्रा को मैदान में उतारा है, जिनके सामने आम आदमी पार्टी ने मौजूदा विधायक कुलदीप कुमार के नाम की घोषणा की है। वहीं नई दिल्ली सीट पर भाजपा ने दिवंगत भाजपा नेत्री सुषमा स्वराज की सुपुत्री बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार घोषित किया है। इस सीट पर आम आदमी पार्टी ने सोमनाथ भारती को अपना प्रत्याशी बनाया है। पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट पर भाजपा ने कमलजीत सहरावत को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिनके मुकाबले के लिए आम आदमी पार्टी ने महाबल मिश्रा को चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की है। भाजपा ने अपने मौजूदा सांसद मनोज तिवारी को पूर्वोत्तर दिल्ली से अपना प्रत्याशी घोषित किया है। इसके अलावा भाजपा ने दक्षिणी दिल्ली से रामवीर सिंह विधूड़ी, उत्तर पश्चिमी सीट से योगेन्द्र चंदोलिया और चांदनी चौक सीट से प्रवीण खंडेलवाल को मैदान में उतारा है। दिल्ली में 6वें चरण के अंतर्गत मतदान के लिए 29 अप्रैल को अधिसूचना जारी होगी और मतदान 25 मई को होगा। मतगणना 4 जून को संपन्न होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद मंत्रियों ने गंभीरता की कमी दिखाई है और असंवेदनशीलता उनके काम में झलक रही है। गृह मंत्रालय को लिखे पत्र में श्री सक्सेना ने दावा किया कि मंत्रियों ने बहाने बनाकर उनके साथ बैठकों में भाग लेने से इनकार किया है। उन्होंने कहा कि परामर्श आवश्यक है ताकि शासन के नियमित कार्यों में बाधा न आए। उपराज्यपाल ने सार्वजनिक स्वास्थ्य ढांचे और पानी की उपलब्धता के लिए ग्रीष्मकालीन कार्य योजना पर चर्चा के लिए मंत्रियों की बैठक बुलाने का निर्णय लिया था। इस बीच राजधानी में जल आपूर्ति की समस्या और सीवेज लाइनों के रखरखाव के संबंधित मुद्दों पर दिल्ली विधानसभा में कल एक दिवसीय विशेष सत्र का आयोजन किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल द्वारा सदन की कार्यवाही शुरू करने के तुरंत बाद विपक्ष के नेताओं ने कथित जल बोर्ड घोटाले को लेकर सरकार को घेरने का प्रयास किया। इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के आरोप में मार्शलों की मदद से सभी विपक्षी भाजपा विधायकों को सदन से बाहर करवा दिया, जिसके बाद भाजपा विधायकों ने विधानसभा परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास धरना दिया। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की। सदन में दिल्ली सरकार के मोहल्ला क्लिनिकों, अस्पतालों और डिस्पेंसरियों में दवाइयों की कमी और आपूर्ति के मुद्दे पर भी चर्चा की गई। राजधानी के सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक वर्ष 2024-25 के लिए कक्षा 6 से 9 में दाखिले की ऑनलाइन प्रक्रिया कल से शुरू हो गई है। दाखिले के लिए शिक्षा निदेशालय की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। और मुंबई का रुख करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास में राजनीतिक सभाएं आयोजित होने का राज्य चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र के मुख्य चुनाव अधिकारी श्री एस चोकलिंगम के अनुसार मुंबई शहर के जिला कलेक्टर द्वारा संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किए गए हैं। इन नोटिसों के जवाब मिलने के बाद ही आगे की कोई कार्रवाई तय की जाएगी। इस बीच बढ़ते तापमान के बीच मुंबई उपनगरीय जिला कलेक्टर राजेंद्र क्षीरसागर ने आपदा प्रबंधन तैयारियों के संबंध में समीक्षा बैठक की। ग्रेटर मुंबई नगर निगम और फायर ब्रिगेड विभाग के अलावा वार्ड अधिकारियों को भी ये सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि अत्यधिक गर्मी, बेमौसम बारिश या तेज हवाओं के कारण मतदान प्रभावित न हो। पश्चिम रेलवे अपने यात्रियों को परेशानी मुक्त तथा आरामदायक यात्रा और बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से टिकट जांच अभियान चलाती है। अप्रैल 2023 से मार्च 2024 की अवधि के दौरान बिना वैध टिकट यात्रा करने वाले यात्रियों से 173 करोड़ रूपये से अधिक का जुर्माना वसूला गया। पश्चिम रेलवे ने एक बार फिर से आम जनता से उचित और वैध टिकटों के साथ यात्रा करने का आग्रह किया है। महाराष्ट्र में आज गुढ़ी पड़वा का पर्व मनाया जा रहा है। इसके साथ ही महाराष्ट्र में आज से मराठी नववर्ष भी आरंभ हो रहा है। इस अवसर पर महाराष्ट्र में भव्य शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी। घरों को परंपरागत गुढ़ी और फूलों तथा आम और नीम के पत्तों से सजाया जा रहा है। महाराष्ट्र के राज्यपाल रमेश बैस ने गुढ़ी पड़वा और नववर्ष के आगमन पर महाराष्ट्र के लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा कि यह त्यौहार विभिन्न भागों में चैत्र शुक्लादि, उगादि, संसार पड़वो और चेटी चांद के रूप में मनाया जाता है। श्री बैस ने कामना की है कि ये त्यौहार लोगों में स्नेह, भाईचारा और सद्भाव को बढ़ावा देगा। और कोलकाता का रुख करते हैं, जहां कोलकाता के स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकियां मिल रही हैं। ऐसा संदेह है कि आतंकवादी संगठन लश्कर ए तैयबा बंगाली भाषा में पत्र भेज रहे हैं और कुछ मामलों में मेल भी भेजे जा रहे हैं। करीब 200 स्कूलों को ये धमकी भरे ईमेल मिले हैं। जानकारों के अनुसार ये आम चुनाव से पहले लोगों को डराने की साजिश हो सकती है। कोलकाता पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। और अब महानगरों के मौसम का हाल भी जान लेते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मौसम की बात। दिल्ली में आज न्यूनतम तापमान 18 डिग्री रहा। दिन में 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया जा सकता है। छिटपुट बादल दिख सकते हैं, लेकिन दिन में ज्यादातर समय धूप छाई रहेगी और मौसम शुष्क रहेगा। मुंबई में भी आसमान साफ और मौसम शुष्क रहेगा, यानी बारिश की संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है और दिन में पारा 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया जा सकता है। और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल तो छाए रह सकते हैं, लेकिन बारिश की संभावना यहां पर भी नहीं है। तापमान 27 और 34 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किए जाने की संभावना है। और सरबजीत से जानते हैं चेन्नई और बेंगलुरु तथा हैदराबाद का मौसम।
Yes, listeners, Chennai is expected to have partly cloudy sky. The minimum temperature recorded at 26 degrees Celsius, maximum will be around 36 degrees. Bengaluru again is expected to have mainly clear sky. The minimum temperature is 22 degrees Celsius, maximum will be around 36 degrees. Hyderabad again with a partly cloudy sky, the temperature is recorded minimum 26 degrees, maximum around 40 degrees Celsius. And Devendra, we've reached the last segment of the program, Aaj Savere, where it's time to flip the pages of history to see what makes today, 9th of April, memorable and so special. 1860, 9th April, the human voice was recorded for the first time in Paris by Edward Leon Scott de Martin Villet. 1989, on this day, Asia's first completely underground संजय हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट वॉज स्टार्टेड।
जी, 1998 में सऊदी अरब में मीना के पास भगदड़ में 150 से अधिक यात्रियों की मृत्यु हो गई थी।
2002, 9th April, women were allowed to participate in municipal elections in Bahrain.
और इससे पहले वर्ष 1999 में खालसा पंथ की त्रिशति पर विशेष डाक टिकट जारी किया गया था.
2003, 9th April, Steve Waugh became the player to play most tests.
वर्ष 2006 में यूरेनस ग्रह के चारों ओर शनि जैसा वलय होने की पुष्टि आज ही के दिन यानी 9 अप्रैल को हुई थी और 2008 में राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने वर्ष 2007-08 में अपने कारोबार में पिछले वित्त वर्ष की तुलना में 21% की वृद्धि दर्ज की थी और 2008 में नेपाल में बहुप्रतीक्षित संविधान सभा के लिए मतदान की शुरूआत हुई थी.
2011, 9th April, Anna Hazare ended his 95-hour fast unto death after the government accepted the demand of enacting a Lokpal law.
जी, और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन महान शख्सियतों की जिनका जन्मदिन, जयंती या पुण्यतिथि है. सबसे पहले बात करेंगे सुप्रसिद्ध फिल्म निर्माता और निर्देशक शक्ति सामंत की जिनकी आज पुण्यतिथि है. शक्ति सामंत का जन्म 13 जनवरी 1926 को हुआ था और उन्होंने 9 अप्रैल 2009 को यानी आज ही के दिन वर्ष 2009 को इस दुनिया को अलविदा कहा. देहरादून से इंटरमीडिएट की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कलकत्ता जाकर इंजीनियरिंग एंट्रेंस की परीक्षा दी और अव्वल भी आए. शक्ति अपने चाचा के कहने पर उनके काम में हाथ बटाने लगे, साथ ही साथ वो थिएटर और ड्रामा के अपने शौक को भी पूरा करते रहे. शक्ति सामंत की मुलाकात दादा मुनि यानी अशोक कुमार से हुई जो उनके पसंदीदा अभिनेता भी थे और जो उन दिनों बॉम्बे टॉकीज से जुड़े हुए थे. दादा मुनि ने उन्हें इस शर्त पर सहायक निदेशक के तौर पर बॉम्बे टॉकीज में रख लिया कि उन्हें कोई तनख्वाह नहीं मिलेगी सिवाय दोपहर के खाने और चाय के. शक्ति सहमत हो गए. उत्तर प्रदेश में रहने के कारण उनकी हिंदी काफी अच्छी थी जो फिल्मों में उनके लिए काफी काम की रही. उनकी प्रतिभा और व्यक्तित्व को समझकर दादा मुनि ने उनसे अभिनय में नहीं बल्कि फिल्म निर्माण के तकनीक क्षेत्र में हाथ आजमाने को कहा और उसके बाद तो शक्ति सामंत ने हिंदी सिनेमा में एक से बढ़कर एक हिट फिल्में देकर इतिहास रचा. शक्ति सामंत ने हावड़ा ब्रिज, अमर प्रेम, आराधना, कटी पतंग, कश्मीर की कली, अमानुष जैसी एक से बढ़कर एक यादगार फिल्में बनाई हैं. ये सूची बहुत लंबी है लेकिन उनकी फिल्मों के कुछ गाने हम आपको सुनवाते हैं.
Well, Devendra, you have brought a handful of numbers for us today. Moving on further, we are remembering today Mary Jackson. Today is her birth anniversary. She was an American mathematician and aerospace engineer at the National Advisory Committee for Aeronautics, which in 1958 was succeeded by the National Aeronautics and Space Administration, NASA. Mary Jackson went down in history as the first African-American woman to work as a NASA engineer. Initially a maths teacher, she later joined NACA under Dorothy Vaughan and contributed to countless American space programs at a time when racial segregation was the norm. Another personality, Devendra, whom we are paying tributes today, is Edward Muybridge, an English photographer known for his pioneering work in photographic studies of motion and early work in motion picture projection. Muybridge achieved international prominence when he exhibited photographs of Yosemite Valley in 1868. He's said to have inspired several artists and inventors like Saul Leavitt, Thomas Eakins, William Dixon and Francis Bacon.
जी, और हिंदी यात्रा साहित्य के जनक महापंडित राहुल सांकृत्यायन की आज जयंती है। 20वीं सदी के पूर्वार्ध में उन्होंने यात्रा, वृत्तांत तथा विश्व दर्शन के क्षेत्र में साहित्यिक योगदान किए। बौद्ध धर्म पर उनका शोध हिंदी साहित्य में युगांतरकारी माना जाता है, जिसके लिए उन्होंने तिब्बत से लेकर श्रीलंका तक भ्रमण किया था। इनकी मुख्य रचनाओं में शामिल है घुमक्कड़ शास्त्र, सतमी के बच्चे, जीने के लिए, सिंह सेनापति, वोल्गा से गंगा आदि। महापंडित राहुल सांकृत्यायन को सन 1958 में साहित्य अकादमी पुरस्कार और 1963 में भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। इनका जन्म 9 अप्रैल 1893 को हुआ था और निधन 14 अप्रैल 1963 को।
In fact, Devendra, it is said that Pandit Rahul spent 45 years of his life on travels away from home.
Ji.
Moving on further to the next personality, we are remembering today Charles Eguin Delaunay, a French astronomer and mathematician. His lunar motion studies were important in advancing both the theory of planetary motion and mathematics. A prolific writer, he wrote several books which contributed to the development of planetary motion theories, functional analysis and computer algebra. In his last years, he served as the director of Paris Observatory.
Kannada cinema ki prasiddha abhinetri Pratima Devi ki bhi aaj jayanti hai. Unhone abhinay ke sapne ko pura karne ke liye ghar chhod diya tha aur acting ke prati unme itna junoon tha ki mahaz 11 varsh ki umr mein ise pura karne ke liye koshishen shuru kar di. Pratima Devi ko Karnataka sarkar dwara varsh 2000-2001 ke liye lifetime achievement award se sammanit kiya gaya tha. Pratima Devi ki Jagan Mohini pehli Kannada film thi jisne box office par lagatar 100 din pure kiye the. Aur अब जानकारी हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक शरण रानी की, जिनका जन्म हुआ था 9 अप्रैल 1929 को और वे प्रथम महिला थी जिन्होंने सरोद जैसे मर्दाना साज को संपूर्ण ऊंचाई प्रदान की। इसी कारण उनके प्रशंसक उन्हें सरोद रानी के नाम से भी पुकारते थे। शरण रानी का देहांत उनके 80वें जन्मदिन से एक दिन पहले ही हो गया था। शरण रानी 20वीं सदी की म्यूजिक लीजेंड मानी जाती है। पद्म भूषण और पद्मश्री से सम्मानित की जा चुकी शरण रानी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारत की सांस्कृतिक राजदूत कहकर सम्मानित किया था।
Listeners, today is the birth anniversary of one of the most ingenious and prolific figures in engineering history, one of the 19th century engineering giants and also known as the greatest figures of the Industrial Revolution. Yes, listeners, today is the birth anniversary of Isambard Kingdom Brunel, who changed the face of the English landscape with his groundbreaking designs and ingenious constructions. Brunel built dockyards, the Great Western Railway, a series of steamships including the first purpose-built transatlantic steamship and numerous important bridges and tunnels.
जी, और अब समय हो गया है कि हम अपने श्रोताओं से विदा ले लें, तो दीजिए अनुमति देवेंद्र त्रिपाठी और सरबजीत कौर को कार्यक्रम आज सवेरे ही संपन्न करने की। लेकिन आप सुनते रहिए आकाशवाणी गोल्ड, और अगर आप आज सवेरे कार्यक्रम को दोबारा सुनना चाहते हैं तो लॉग ऑन कर सकते हैं हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर।
लिसनर्स, थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन, हैव अ सुपर्ब डे, नमस्कार।